संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरी विभूति और योग को तत्व से जानने वाला अविचल भक्ति से युक्त हो जाता है। अतः विभूति और योग को तत्व से जानना क्या है, इसका विवेचन आगे के 8वें श्लोक में करते हैं।
अहम् सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विताः।
मैं संसार मात्र का प्रभव हूँ, मूल कारण हूँ, और मेरे से ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मेरे को मानकर मेरे में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। व्याख्या। पूर्व श्लोक की बात ही इस श्लोक में कही गई है। अहम् सर्वस्य प्रभवः में सर्वस्य भगवान की विभूति है, अर्थात देखने सुनने समझने में जो कुछ आ रहा है वह सब की सब भगवान की विभूति ही है। मत्तः सर्वं प्रवर्तते में मत्तः भगवान का योग है, प्रभाव है, जिससे सभी विभूतियां प्रकट होती हैं। 7वें, 8वें और 9वें अध्याय में जो कुछ कहा गया है वह सब का सब इस श्लोक के पूर्वार्ध में आ गया है। अहम् सर्वस्य प्रभवः, मानस, नादज, बिंदुज, उद्भिज, जरायुज, अंडज, स्वेदज अर्थात जड़, चेतन, स्थावर, जंगम, यावन मात्र जितने प्राणी पैदा होते हैं, उन सब की उत्पत्ति के मूल में परम पिता परमेश्वर के रूप में मैं ही हूँ। जैसे 7वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान ने अपने को अपरा और परा प्रकृति का कारण बताया है, और 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में अपने को बीज प्रदान करने वाला पिता बताया है, ऐसे ही यहाँ भगवान ने अपने को सबका उत्पादक बताया है। यहाँ प्रभव का तात्पर्य है कि मैं सबका अभिन्न निमित्तोपादान कारण हूँ, अर्थात स्वयं मैं ही सृष्टि रूप से प्रकट हुआ हूँ। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, संसार में उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, पालन, संरक्षण आदि जितनी भी चेष्टाएं होती हैं, जितने भी कार्य होते हैं, वे सब मेरे से ही होते हैं। मूल में उनको सत्ता, स्फूर्ति आदि जो कुछ मिलता है वह सब मेरे से ही मिलता है। जैसे बिजली की शक्ति से सब कार्य होते हैं, ऐसे ही संसार में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का मूल कारण मैं ही हूँ। अहम् सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते कहने का तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि प्राणी मात्र के भाव, आचरण, क्रिया आदि की तरफ न जाकर उन सब के मूल में स्थित भगवान की तरफ ही जानी चाहिए। कार्य, कारण, भाव, क्रिया, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि के मूल में जो तत्व है उसकी तरफ ही भक्तों की दृष्टि रहनी चाहिए। 7वें अध्याय के 7वें तथा 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के 5वें और इस 8वें श्लोक में मत्तः पद बार बार कहने का तात्पर्य है कि ये भाव, क्रिया, व्यक्ति आदि सब भगवान से ही पैदा होते हैं, भगवान में ही स्थित रहते हैं और भगवान में लीन हो जाते हैं। अतः तत्व से सब कुछ भगवत स्वरूप ही है, इस बात को जान लें अथवा मान लें तो भगवान के साथ अविकम्प योग, कभी विचलित न किया जाने वाला योग अर्थात संबंध हो जाएगा। यहाँ सर्वस्य और सर्वम दो बार सर्व पद देने का तात्पर्य है कि भगवान के सिवाय इस सृष्टि का न कोई उत्पादक है और न कोई संचालक है। इस सृष्टि के उत्पादक और संचालक केवल भगवान ही हैं। इति मत्वा भाव समन्विता। भगवान से ही सब संसार की उत्पत्ति होती है और सारे संसार को सत्ता स्फूर्ति भगवान से ही मिलती है, अर्थात स्थूल सूक्ष्म और कारण रूप से सब कुछ भगवान ही हैं। ऐसा जो दृढ़ता से मान लेते हैं वे भगवान ही सर्वोपरि हैं, भगवान के समान कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं तथा होना संभव भी नहीं, ऐसे सर्वोच्च भाव से युक्त हो जाते हैं। इस प्रकार जब उनकी महत्व बुद्धि केवल भगवान में हो जाती है तो फिर उनका आकर्षण, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम आदि सब भगवान में ही हो जाते हैं। भगवान का ही आश्रय लेने से उनमें समता, निर्विकारता, निशोकता, निश्चिंतता, निर्भयता आदि स्वतः स्वाभाविक ही आ जाते हैं। कारण कि जहाँ देव परमात्मा होते हैं वहाँ दैवी संपत्ति स्वाभाविक ही आ जाती है। बुधाहा, भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता ही न मानना, भगवान को ही सबके मूल में मानना, भगवान का ही आश्रय लेकर उनमें ही श्रद्धा प्रेम करना, यही उनकी बुद्धिमानी है, इसलिए उनको बुद्धिमान कहा गया है। इसी बात को आगे 15वें अध्याय में कहा है कि जो मेरे को क्षर संसार मात्र से अतीत और अक्षर जीवात्मा से उत्तम जानता है वह सर्ववित है और सर्व भाव से मेरा ही भजन करता है। माम भजन्ते, भगवान के नाम का जप कीर्तन करना, भगवान के रूप का चिंतन ध्यान करना, भगवान की कथा सुनना, भगवत संबंधी ग्रंथों का पठन पाठन करना, अर्थात गीता, रामायण, भागवत आदि का पठन पाठन करना, ये सब के सब भजन हैं। परंतु असली भजन तो वह है जिसमें हृदय भगवान की तरफ ही खिंच जाता है, केवल भगवान ही प्यारे लगते हैं, भगवान की विस्मृति चुभती है, बुरी लगती है। इस प्रकार भगवान में तल्लीन होना ही असली भजन है। विशेष बात, सबके मूल में परमात्मा है और परमात्मा से ही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना आदि सबको सत्ता स्फूर्ति मिलती है। ऐसा ज्ञान होना परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले सभी साधकों के लिए बहुत आवश्यक है। कारण कि जब सबके मूल में परमात्मा ही है तब साधक का लक्ष्य भी परमात्मा की तरफ ही होना चाहिए। उस परमात्मा की तरफ लक्ष्य कराने में ही संपूर्ण विभूतियों और योग के ज्ञान का तात्पर्य है। यही बात गीता में जगह जगह बताई गई है। जैसे जिससे संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा पूजन करना चाहिए। जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान है और जो सब प्राणियों को प्रेरणा देता है, उस परमात्मा की सर्व भाव से शरण जाना चाहिए। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये साधन तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर उपर्युक्त ज्ञान सभी साधकों के लिए बहुत ही आवश्यक है।